சித்தம் சுத்தம் பணமிய ஜிணிந்தவரனே மிகந்த மகலங்கம் குணரயண பூசணுதயம் ஜீவச பருவணம் ஓச்சம்.
यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है जो पंडित टोडरमल जी ने मुंडारी भाषा में लिखा हुआ है. मूल ग्रंथ है गोमटसार, जिसकी रचना किसने की थी? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती. अभी यहां हम योग की बात चल रही है, योग की प्ररूपणा. जीव की जो 20 प्ररूपणा है, जीवों का 20 अलग अलग पद्धति से जो व्याख्यान किया है, वर्णन किया है, उसमें से योग की अपेक्षा हम देखेंगे जीवों का क्या क्या, उनमें कैसे कौन से प्रकार के योग होते हैं. योग किसे कहना? आवाज नहीं है. योग की बात हम देखते हैं. योग किसे कहना, उसको हम पहले देखेंगे. इसकी हमने विस्तार से चर्चा की ही थी. अब यहां जो दूसरी पुस्तक में भी इसकी बात आई है 740 पृष्ठ पर, जिसको अंतर्भाव अधिकार लिखा है, उसमें भी ये बात आई है दूसरी पुस्तक में. पहले पुस्तक में तो पूर्ण उसका विस्तार से वर्णन है ही है. ये दूसरी पुस्तक है ना, द्वितीय भाग जो हमने किया है जीवकांड का, उसकी बात है. तो देखो उसमें बात है, हम शॉर्ट में देखते हैं कि योग क्यों होता है. तो उसको कहते हैं कि जो शरीर नाम कर्म है और अंगोपांग नाम कर्म है, उसके उदय से, यानी उसके उदय से युक्त ऐसा जो जीव है, तो वो क्या करता है? मन वचन काय के अवलंबन से युक्त होता है और उसके कारण कर्म और नो कर्म आते हैं. उसके कारणभूत ऐसे जो जीव के प्रदेशों का चंचलपना, उसको कहते योग. जीव के प्रदेश चंचल होते हैं, उसको योग कहते हैं. और उनमें वो जो ऐसी शक्ति कि जो कर्म को और नोकर्म को ग्रहण करे, उस शक्ति को कहेंगे भाव योग. और वो जो चंचलपना है, जो चंचलता है, प्रदेशों की चंचलता, उसको कहेंगे द्रव्य योग. उसके कारण क्या होता है? जो कार्मण स्कंद है, कार्मण वर्गणा है, वो कर्मरूप परिणमित होती है. और जो अन्य आहार वर्गणा है, औदारिक वैक्रिक शरीर रूप परिणमने योग्य, वो उस रूप परिणमित होती है. उसमें निमित्त कौन है? तो जो जीव ने पूर्वावस्था में जो शरीर नाम कर्म बांधा है, 5 शरीर नाम कर्म है, तो जिसका जहां उदय होता है वहां उस जाति का योग पाया जाता है. ये योग से हमने देखा था ना, कल बात आई थी प्रवचन में भी, हेमचंद जी ने बताया था कि उससे प्रकृति और प्रदेश बंध होता है. देखो जीव के जो कर्म बंध के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कहो या उसको गर्वित करेंगे तो कषाय और योग. तो योग है वो आखिर वाला है. जब योग है, यानी जो मिथ्यात्व जिसके है उसको चारों है, मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, कषाय भी है और योग भी है, तो उसका योग इन तीनों से गर्भित है. तो मिथ्यात्व चले जाने के बाद अविरति, कषाय और योग, तो वहां योग से जो प्रकृति और प्रदेश बनते, तो कौन सी प्रकृतियां बनती है? तो जो मिथ्यात्व सहित योग होगा तो उसको तो तीर्थंकर आहारक छोड़कर बाकी सभी प्रकृतियां बनेगी. जब चौथे गुणस्थान में जीव आता है, और हम कहते हैं ना 41 प्रकृतियां नहीं बनती है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कारण बंध योग्य प्रकृति नहीं बनती है, फिर भी अभी यहां अविरति है, कषाय है, तो उस सहित वाला योग उतने प्रकृतियों को बांधेगा. जीव और ऊपर के गुणस्थानों में चला गया, मुनि हुआ, तो अभी अविरति नहीं रही परंतु कषाय है, संज्वलन कषाय है, तो संज्वलन कषाय युक्त योगों के कारण जितना बंध है उतना ही बंधेगा. मिथ्यात्व और अविरति के साथ जितनी प्रकृतियां बनती थी वो अभी नहीं बंधेगी. ये ऐसा ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है. तो हमें तो यहां योग कहां, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से योग होते हैं उसकी चर्चा करना है, उसको हम डिराइव करना है. ये कोई याद करने की बात नहीं है. हमने कल योगों में गुणस्थान कौन से होते हैं वो देखा था, अब हम गुणस्थानों में योग कैसे डिराइव करना, कैसे ढूंढना, क्योंकि ये आप तो कहते हैं याद करने की बात नहीं है, तो कैसे ख्याल में आएगा हमें, तो हम उसको बिल्कुल आसानी से देखेंगे। तो यहाँ तो पहले में पहले ये बात आती है कि जो पुद्गल विपाकी कर्म है, यहाँ जो शरीर और अंगोपांग नाम कर्म है, उसके उदय में जीव को योग होता है। ये बात महत्व की बात है। देखो कषाय क्यों होते हैं, तो मोहनीय कर्म के उदय में कषाय होते हैं। मिथ्या तो कर्म के उदय में होता है, और बाकी कषाय तो चारित्र मोह के कर्म के उदय में होते हैं। वैसे ही योग यहाँ आवाज नहीं है, बाहर है तो सबको बाहर बैठना पड़ेगा। वो आएंगे, तब तक जरा उपयोग सूक्ष्म करना और सुनना। देखो हम यहाँ अभी देखेंगे ये कैसे निकालना। इसको हम देखेंगे अभी कैसे निकालना। जैसे हमने कल देखे थे योग कितने प्रकार के या कितने योग है, तो टोटल हमने 15 देखे थे, मन के 4, वचन के 4 और का योग, वो 7 प्रकार के। 7 प्रकार कौन से देखे थे? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रेय, वैक्रेय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारक। इस तरह से ये 7 का योग है। और आपका प्रश्न था ना कल, एक जीव को एक साथ कितने योग होते हैं? हमने बोला आप ही अभी चले गए निद्रा योग में थे। देखो अभी इसको हम डिराइव करेंगे, कौन से गुणस्थान में कितने, कहां किस जीव को कितने योग होते हैं, वो कैसे देखना, उसको हम क्रम से देखेंगे। इसके लिए एक बात अवश्य है कि कौन से गुणस्थान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ये यदि हमें पता चलेगा तो उनमें कौन सा योग होता है ये ढूंढना आसान है। तो हम देखते हैं मिथ्या तो गुणस्थान पहला राजा, तो वो कौन कौन से जीवों को होता है या उस गुणस्थान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ एक शब्द लिखा है जीव समास। अभी जो यहाँ अपने शिविर में थे उन्हें पता है जीव समास क्या है, हम फिर थोड़ा उसे देखते हैं। तो 14 जीव समास है। कौन से? तो एकेन्द्रिय के 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। फिर द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय के भी 2 भेद है, असंगी पंचेन्द्रिय और संगी पंचेन्द्रिय। ये तो 7 हुए। इन 7ों में ही अपर्याप्त भी जीव होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं, यानी उनके लब्धि पर्याप्त भी हो सकते हैं, निवृत्ति पर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं। इस तरह से इसको कहते हैं 14 जीव समास। तो ये 14 में भी ये मिथ्या तो है, क्योंकि एकेन्द्रियों से असंगी पर्याप्त सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही है। संगी पंचेन्द्रिय भी सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, उनमें भी मिथ्यात्व जीव है, उनमें भी अपर्याप्त अवस्था में भी है, कोई पर्याप्त अवस्था में भी है। तो मिथ्या तो गुणस्थान में कौन कौन से जीव है, तो यहाँ कहा है 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त। 14 जीव समास। इसमें एक बात हमें योग ढूंढना है ना, तो देवों और नारकियों में वैक्रेक वगैरह पाया जाता है, वैक्रेक मिश्र, और मनुष्य तीरंचों में औदारिक, औदारिक मिश्र। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि इन 14 जीव समासों में कौन कौन से गति वाले जीव वहां पाए जाते हैं। तो चारों ही गति वाले है, क्योंकि एकेन्द्रिय से असंगी तक तो तीरंच है, संगी पंचेन्द्रिय में मनुष्य है, नारकी है, देव है, तो ये चारों गति वाले हैं, एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक है। यहां तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 ही कॉलम किए हैं, परंतु जहां ये 20 प्ररूपणाएं समझाई, आपकी जो पास पुस्तक दी थी उसमें से 20 कॉलम किए हैं, और वो सब में एक एक गुणस्थान में एक एक क्राइटेरिया लेकर उस पर सभी 20 प्ररूपणाएं गठित करके दिखाई। उसका सैंपल यहाँ 5 ही हमने यहाँ कॉलम बनाए हैं, क्योंकि हमें योग ढूंढना है, योग कहाँ कौन सा है उसको देखना है, इसलिए यहाँ 5 कॉलम किए। क्यों किए? क्योंकि यदि हम इसके जीव समास देखते हैं तो उसमें योग घटित करना बहुत आसान हो जाता है। तो चारों गति वाले हैं और एकेन्द्रियों से पंचेन्द्रिय तक के जीव है, इसलिए अभी हम यहाँ योग कौन से होते हैं वो देखेंगे। ख्याल आए ना बात? जैसे एक इंद्रियों में मन नहीं हो, वचन नहीं हो, वहां वो योग भी नहीं होगा। तो एक इंद्रियों में कौन सा होगा, तो पर्याप्तों में औदारिक होगा और अपर्याप्तों में औदारिक मिश्र होगा एक इंद्रियों में। द्विंद्रियों में कौन सा होगा, तो पर्याप्तों में वचन योग और काय योग होगा, औदारिक काय योग, और अपर्याप्तों में औदारिक मिश्र होगा और कारमाण भी होगा। ये कारमाण भी लिखा है यहाँ, हाँ कारमाण भी है। अभी जो देव नारकियों में कौन सा होगा, पर्याप्तों में वैक्रिय काय होगा, मनो वचन दोनों हो गए, चार मन के चार वचन के, और फिर अपर्याप्तों में वैक्रिक मिश्र और कारमाण होगा। तो अभी हमें पहले गुणस्थान के टोटल योग देखने हैं, तो हमें सभी गतियों के जीवों की अपेक्षा देखना है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक देखना है, और पर्याप्तों के भी देखना और अपर्याप्तों के भी देखना। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मन के चार, वचन के चार, औदारिक एक, वैक्रिक एक, ये तो ये सारे जो है पर्याप्तों के हुए। कौन से, मन के चार, वचन के चार, औदारिक कायोग और वैक्रिक कायोग, ये पर्याप्तों में हो गए। और अपर्याप्त जीव जो पहले गुणस्थान वाले हैं उनमें कौन कौन से हो गए, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण। कारमाण कब होता है, विग्रह गति में, जो मोड़ सहित जाते हैं उनके एक दो या तीन समय तक वो कारमाण का योग होता है। इतनी बात समझ में आई, ये डिराइव करना बहुत आसान है, ये याद करने से रटने से कुछ नहीं ख्याल में आने वाला। करना नियोग की बहुत से बातें तो कॉमन सेंस की ही है, गणित जैसे। अब वो तो सोचना है किस तरह, ये ऐसा क्यों लिखा, तो सोचते हैं तो हमें वो हम फटाफट बोल भी सकते हैं, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। तो पहले गुणस्थान में 14 की 14 जीव समास है और चारों गति है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव है, इसलिए हमें ये मन के चार, वचन के चार, औदारिक एक, वैक्रिक एक, और अपर्याप्तों के लिए वैक्रिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारण, बराबर। अभी दूसरे गुणस्थान की बात देखेंगे, ये बात समझ में आई क्या, रिपीट करना है किसी के लिए, सुशीला बेन, हाँ बहुत अच्छा। आपने कहा कि आहारक क्यों नहीं लिया, हाँ रमा बेन आहारक को क्यों छोड़ा, किसके आपको ही प्रश्न पूछने वाले को ही उत्तर या समझ में आ गया, क्योंकि आहारक का योग या आहारक मिश्र किसके होगा, मुनिराज के छठे गुणस्थान वर्ती के होगा और किसी के नहीं होगा। तो 15 योगों में से आहारक दो जो है, आहारक और आहारक मिश्र, इनके छोड़कर यहाँ 13 योग पाए जाते हैं। एक साथ एट ए टाइम एक ही योग होता है किसी जीव, परंतु मिथ्या तो गुणस्थान वाले जो अनेक जीव है उनमें अलग अलग जीवों में कौन कौन से योग पाए जाएंगे उसकी यहाँ चर्चा है। अभी हम एक एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे। एक इंद्रिय कोई है और पर्याप्त है, आप कह सकोगे एक इंद्रिय जीव है और पर्याप्त हो गया है, ट्राई करना उसमें कौन सा, इसमें से कौन से हो गए उसमें, जरा वो मैंने इस बच्चे को पूछा है, आप ट्राई करना। मन है कि उनको नहीं है, वचन एक इंद्रियों को नहीं होता है, वैक्रियक होगा क्या उसको, अभी हम तो वो सामान्य, वो वायु का एक वो बात भूल जाओ, हम तो सामान्य एक इंद्रिय बादर की बात करें, पर्याप्तों की बात करें, तो उनको कौन सा योग होगा, का योग, कौन सा औदारिक का योग, बराबर। और जो एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव है उनके कौन सा होगा, औदारिक मिश्र होगा या कारमाण होगा, जो विग्रह गति में है, विग्रह गति में भी उनको अपर्याप्त कहेंगे। तो एक अपर्याप्त है ना वो जीव, अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती शरीर पर्याप्ति, तब तक उसको अपर्याप्त कहेंगे। तो इस तरह से हमको लेना है। अभी कोई द्विंद्रिय है, द्विंद्रिय पर्याप्त उनको इसमें से कौन कौन से हो गए, वचन है, वचन में भी कौन सा वचन है, अभी ये हुआ नहीं अपना, चार प्रकार के वचन है ना, उसमें से उनको सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, उभय भी नहीं, अनुभय वचन योग है, क्योंकि वो ना सत्य है ना असत्य, ऐसे कोई वो संकेतात्मक उनके इशारा जो देते हैं ऐसी भाषा होती है, इसलिए वो सत्य असत्य कुछ नहीं कह सकते हम, अनुभय वचन योग है। और वहां औदारिक का योग है पर्याप्तों को, ये वचन योग भी पर्याप्तों को होगा, पर्याप्ति पूरी हुए बिना उनके वचन नहीं होता, वचन योग भी नहीं होता। और अपर्याप्तों को कौन सा है? कारमाण और औदारिक मिश्र। अभी कोई जो देव है, देवों के कौन सा होगा इसमें से? पर्याप्त देवों को कौन कौन से योग हो गए? मनोयोग 4, वचन योग 4 और वैग्रह का योग 9 हो गए ना देवों के। ऐसे हमें सोचना चाहिए। मनुष्यों के कितने हो गए? औदारिक एक, पर्याप्तों को, और अपर्याप्त में औदारिक मिश्र और कारमा। और देवों के अपर्याप्त अवस्था में, देवों की होती है ना निर्वृत्ति अपर्याप्त के, जब उनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक उनके वैक्रेक मिश्र कहलाएगा। हाँ, चार मन के, चार वचन के, हेलो, आवाज कम है ना इसकी? हाँ, हेलो हेलो, हाँ तो अभी हम, हाँ ठीक है अभी, हाँ मिल गया आपको। देखो अभी हमारे दोबारा हम देखते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान में अलग अलग गतियों की अपेक्षा हमने सबको इकट्ठा लिया है, तो कौन कौन से योग हो गए? मन के 4, वचन के 4, औदारिक वैक्रिय के, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कारमाण का। ये बात समझ में आई? क्योंकि पहले गुणस्थान में 14 के 14 जीव समास पाए जाते। अब हम दूसरे गुणस्थान की बात करेंगे, तो दूसरा गुणस्थान जो सासादन गुणस्थान है वो किसको प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? बोलो सुशीला बेन। हाँ, कौन सा सम्यक्त्व? औक्षमिक। औक्षमिक सम्यक्त्व के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 अवली काल बाकी है, उतने काल में अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय होता है, तो जीव का सम्यक्त्व छूटकर वो सासादन गुणस्थान में आता है। अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, सासादन में है। तो सम्यक्त्व किसको होता है? ये 14 जीव समास में से सम्यक्त्व किस जीव को प्राप्त हुआ? संगी पंचेंद्रियों को। परंतु ऐसा है ना, सासादन में मरकर अन्य गति में सासादन के साथ जा सकता है, इसलिए सासादन गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाएगा। क्या कहा? सासादन जो गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान संगी पंचेंद्रियों को होगा, ये बात सही है। पर्याप्तों को है क्या अपर्याप्तों को है? पर्याप्तों को है, परंतु अपर्याप्त अवस्था में भी सासादन चला रहता है। जैसे 6 अवली पहले उस सासादन में आ गया और थोड़े ही काल में उसका मरण हो गया और सासादन के साथ अन्य भाव में गया और वहां जाके वो बाद में मिथ्यात्व में आया। अपर्याप्त अवस्था में ही वो पहले मिथ्यात्व में आ जाता है और बाद में उसकी पर्याप्ति पूरी होती है। अपर्याप्त अवस्था में वो बंद करके आवाज आते हैं। हाँ, अपर थोड़ा फल धीमे करना थोड़ा। हाँ, अभी सांसाधन की बात चल रही है। दोबारा कौन सा? दोबारा सांसाधन वाला। सांसाधन गुणस्थान किसे कहते हैं? तो दूसरे गुणस्थान का नाम है सांसाधन गुणस्थान। वो कब प्राप्त होता है? तो जिसने औक्षमिक समय को प्राप्त किया है और औक्षमिक की अवस्था में, यानी उसके अंतर्मूल काल में ही अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाता है, यानी वो अनंतानुबंधी परिणाम होते हैं उसको और वो सासादन गुणस्थान में आता है। उसी सासादन का काल कितना है? कम से कम एक समय है और अधिक से अधिक 6 अवली है। छह आवली में कितने होते हैं, एक आवली में कितने समय होते हैं, असंख्या, जगन्य युक्ता संख्या, तो छह आवली में भी बहुत है। तो उतने काल में उसका मरण हुआ, अब मान लेते हैं वो मरकर देव में गया, तो देव के अपर्याप्त अवस्था में उसका सासाधन गुणस्थान है। कोई मरकर मनुष्य में गया तो उसके मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान है। कोई मरकर तिर्यंच में गया, सासाधन गुणस्थान में मरकर तिर्यंच में गया तो उसके अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान है, बराबर है नहीं है। इसलिए जब हम सासाधन गुणस्थान वाले को कौन कौन से योग होते हैं ऐसा हमें देखना है। एक नियम है कि सासाधन वाला सासाधन के काल में मरकर नरक में नहीं जाता, ये नियम है। तो अभी हम डिराइव करेंगे सासाधन गुणस्थान किसके होता है, संगी पंचेंद्रियों को होता है, पर्याप्तों में होता है, और मरकर अन्य गति में जाने वाले पंचेंद्रिय जो होता है उसको वो अपर्याप्त अवस्था में भी सासाधन गुणस्थान पाया जाएगा। गति कौन सी है, तो पर्याप्तों में चारों गति, क्योंकि नारकी भी सासाधन में आ सकते हैं। नारकी जो वहां जाकर प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करते हैं वो वहां सम्यक्त से गिरकर सासाधन में आते, इसलिए पर्याप्त नारकियों को तो सासाधन है। परंतु अपर्याप्त अवस्था में मरकर जीव तीन गतियों में जा सकता है।
मतलब ये है कि सासाधन गुणस्थान वाला जो जीव है वो मरकर नरक में नहीं जाता,
नहीं जाता,
लेकिन नरक वाला जीव है उसको सासाधन हो सकता है।
नरक वाला जीव सासाधन हो सकता है क्योंकि नरक में हमने देखा पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही गुणस्थान पाए जाते हैं। क्यों, वहां जाकर किसी ने प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया, उपशम सम्यक तो के काल में ही अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुणस्थान सासाधन प्राप्त हुआ। तो अभी उसके ये पंचेंद्रिय जीव है सभी, उनमें कौन कौन से योग हो गए अभी हम कहें देखते हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों में कौन कौन से हो गए, जब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त कहते हैं तो चारों गति, तो मन चार है, वचन चार है, औदारिक और वैकरिक, ये पर्याप्तों के हो गए। और अपर्याप्तों में ना मन होता है ना वचन योग होता है, तो कौन सा होगा, औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र और कारणा। ये वैकरिक मिश्र कहा है, वो कौन से गति की अपेक्षा वैकरिक मिश्र कहा है, देव गति, क्योंकि नारकियों में सासाधन अपर्याप्त अवस्था में नहीं था। ये बात ख्याल में आया ये बात कि दोबारा चाहिए, ख्याल में आई, क्योंकि कैसे हमको निकालना, एक तरीका, एक बार वो ट्रिक ख्याल में आई तो बहुत आसान है। अब हम तीसरे गुणस्थान की बात देखते हैं। तीसरा गुणस्थान किसके प्राप्त होता है, संगी को होगा कि एकेंद्रियों को होगा कि द्विंद्रियों को होगा, किसको, संगी पंचेंद्रियों के ही होगा तीसरा गुणस्थान। तो ये तीसरे गुणस्थान में जाने वाला जीव पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, ये पहले, क्यों पर्याप्त है, नहीं अनादि, ये सादी मिथ्या दृष्टि भी पहले से तीसरे में जा सकता है, वो भी संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, या कोई सम्यक दृष्टि है वो भी गिर कर तीसरे में आ सकता है, वो पंचेंद्रिय होना चाहिए। तो ये पर्याप्त तो होगा कि अपर्याप्त, क्यों पर्याप्त है, अपर्याप्त को होता नहीं, परंतु यहाँ भी अपर्याप्तों को नहीं होता था दूसरा गुणस्थान, परंतु मरकर वहां गया था वो उसके साथ, हाँ, तो तीसरे में ऐसा लेना कि नहीं लेना, हाँ वो वही उत्तर चाहिए मुझे। तीसरे गुणस्थान में जीव को मरण नहीं होता, आप कहेंगे तो हम हमेशा तीसरे में ही रहेंगे। हाँ उसका काल अंतर मूर्त है, वो बहुत छोटा परिणाम है ना, वहां आयु का बंध होता है ना, मरण होता है ना, मारणांतिक समुद्घात होता है। मरना नहीं चाहता, क्यों नहीं मरना चाहता, यानी ये तो सिद्ध भगवान होना चाहता है, कैसा, आयु कर्म सहित वाला ना, आयु कर्म चाहिए ना उसको, बाकी सब चले जाए चलेगा, परंतु अपने को आयु कर्म चाहिए, ये अपनी मान्यता कैसी है, यानी हमें बंध चाहिए उसका, उदय चाहिए। तो तीसरे में मरण नहीं है, ये तीसरा गुणस्थान कौन से गति में प्राप्त होता है, चारों गति, पंचेंद्रिय है, अभी उनमें कौन कौन से योग हो सकते हैं, मन के चार, वचन के चार, औदारिक, वैकरिक और कुछ नहीं, पर्याप्त ही है, اس میں نہ اودارک مشر ہوگا نہ ویکرک مشر ہوگا نہ کارمان ہوگا. آہار ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو اس کے کتنے ہیں؟ من کے چار، وچن کے چار، اوداریک ایک، ویکرک ایک، اس طرح سے دس. اب کوئی منشیہ ہے تیسرے گنستان والا، اس کو کتنے ہو گئے؟ دس ہو گئے نا. ویکرک نہیں ہوگا اس میں. اور دیووں کو من کے چار، وچن کے چار، ایک ویکرک، اس طرح سے نو ہو گئے. خیال ہے؟ اب چوتھا گنستان، چوتھا گنستان پنچیندریوں کے ہوتا ہے کہ اور کسی کے ہوتا ہے؟ سنگی پنچیندری. پریاپتوں کو ہے کہ اپریاپتوں کو؟ کیوں؟ ابھی جو ساسادن میں ہم نے رول لگایا تھا، مر کر ساسادن کے ساتھ انیہ گتی میں جاتا ہے، تو کوئی چوتھے والا مر کر انیہ گتی میں جاتا ہے کہ نہیں؟ سمیکو کے ساتھ. ہاں تو وگرہ گتی اور اپریاپت اوستھا، اس کے بعد آئے گی. دیکھو ابھی کوئی منشیہ ہے یہاں سمیک درشٹی، مر کر وہ دیو میں جائے گا، تو وگرہ گتی میں بھی وہ کارمان کا یوگ ہوگا، اس کو مان لیتے ایک موڈ لے کے جائے گا تو. اور پھر وہاں ویکرک مشر اوستھا میں بھی اس کا چوتھا گنستھان ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اپریاپت اوستھا میں چوتھا گنستھان ہے ایسا کہیں گے. اب تیرتھنکر ماتا کے پیٹ میں آتے ہیں سورگ سے چیک، تو ان کے کون سا یوگ ہے؟ کارمان ہوگا، کیونکہ اگر ایک موڑ سے آئیں گے تو کارمان کا یوگ ہوگا، اور پھر بعد میں اوداریک مشر بھی ہوگا. گنستان کون سا ہے؟ چوتھا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بعد میں وہ پریاپت ہو جائے گی، تب ہم کہیں گے ان کے اوداریک کا یوگ، پھر منو یوگ، وچن یوگ چالو ہو جائے گا. دیکھو اس طرح سے اس کو ڈیرائیو کرنا ہے کہ چوتھا گنستان ہے تو اس میں جیو سماس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سنگی پنچیندری میں پریاپت بھی ہے، اپریاپت. جب اپریاپت اوستھا دیکھنا ہے تو مر کر اسی گنستان کے ساتھ آ سکتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے. وہ اپریاپت
مر کر کہاں سے آتا ہے؟
دیکھو نارک نارکی سارے سمیک درشٹی مر کر منشیہ میں آئیں گے سمیکتو کے ساتھ، دیو سارے سمیک درشٹی سمیکتو کے ساتھ مر کر منشیہ میں آئیں گے، تیرینچ سمیک درشٹی سمیکو کے ساتھ مر کر دیو ہوں گے. پھر سے ریپیٹ، سارے دیو سمیک درشٹی سمیکو کے ساتھ یدی دوسرے بھو میں جاتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ تو منشیہ میں ہی آئیں گے. نارکی کہاں سب کے؟ چھٹے تک، کیونکہ ساتویں نرک کا نارکی متھیاتو میں ہی مرتا ہے. بھلے تینتیس ساگر میں کچھ کم کال تک، پورے کال تک سمیک درشٹی رہ سکتا ہے. کیسے؟ ساتویں نرک میں جنم لیا، ایک انتر مورت میں سمیک تو پراپت کیا، پورے تینتیس ساگر تک سمیک ہی رہا، انت میں متھیاتو میں گیا، پھر آیو بند کیا اور متھیاتو کے ساتھ مر کر تیرینچ ہوا. ایسا ہی وستو کا سوروپ ہے. اور وستو سوروپ کیوں؟ پرشن کے اتر دینے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. کیا کہا؟ وستو سوروپ میں کیوں ایسا پرشن نہیں آتا؟ وہاں تو بتایا جاتا ہے کیا ہے. سوریہ پورا دشا کو کیوں اگتا ہے بولو؟ نیم. ارے ایسا نہیں نیم، جس دشا میں اگتا ہے اسی کو ہم پورو کہتے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے وہ پورو کو ہی اگتا ہے. تو یہ کرنا نیوگ کے ایسے نیم ہوتے، ایسا ہی وستو کا سوروپ ہے. ساتویں نرک کا نارکی مر کر جہاں اتپن ہوتا ہے وہاں اس بھو میں اس کو سمیک تو نہیں ہو سکتا، ساتویں نرک میں تو ہو سکتا ہے، تینتیس ساگر تک کچھ کم کال تک سمیک بھی رہ سکتا ہے، پرنتو ساتویں نرک کے بعد جو اس نے سنگی پنچیندری بھو لیا اس بھو میں اس کو سمیک تو ہو نہیں سکتا. ہاں ساتویں نرک کا نارکی متھیاتو میں ہی مرے گا اور مر کر تیرینچ ہی ہوگا، یہ نیم ہے. اس بھو میں، اس ایک بھو میں، اس ایک بھو میں سمیک تو نہیں ہوگا. وہ تیرینچ کا جو ساتویں نرک سے جو تیرینچ بنا ہے وہ سنگی پنچیندری ہوتا ہے. نیم سے کسی بھی نرک سے مر کر جو جیو اتپن ہوتا ہے وہ سنگی پنچیندری ہی ہوتا ہے، نہ دویندری ہوتا ہے نہ ایکیندری ہوتا ہے. اس بھو میں نہیں ہوگا. جو ساتویں نرک سے آیا ہوا جیو ہے اس تیرینچوں کو اس بھو میں سمیک تو نہیں ہوگا، छठे नरक में जो सम्यक सो सहित आया है वो मनुष्य होगा वहां। ऐसे कहां से आने वाला जीव कहां तक का पुरुषार्थ कर सकता है, इसका भी नियम है। तीसरे तक के जीव नारकी के आकर यहां तीर्थंकर भी हो सकते हैं। चौथे नरक से आने वाला डायरेक्ट तीर्थंकर नहीं होगा, केवली हो सकता है, मोक्ष जा सकता है। क्या क्या बलभद्र कभी नरक में नहीं जाते, नारायण जा सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो शलाका पुरुष वैसे नहीं हो गए, वो तीर्थंकर हो सकता है पहले नरक का। हाँ, नरक से आए हुए अन्य शलाका पुरुष नहीं होते, बलभद्र वगैरह नहीं होते, वो स्वर्ग से मर कर आए हुए जीव। हाँ, नारायण मरकर नरक में जाते हैं। चौथे नरक से आया हुआ जीव केवली हो सकता है, पांचवे नरक से मरकर आया हुआ जीव मुनि हो सकता है, छठे नरक से आया हुआ जीव समकितिक सम्यक के सहित भी आ सकता है। हाँ, छठे तक के जीव सम्यक के सहित भी वहां से मरकर यहाँ आ सकते हैं, उसकी बात चल रही है। ये ऐसे ही अलग अलग जो गतियों के कहाँ क्या कौन से जीव उत्पन्न होते हैं कैसे, ये अपने यहाँ भूगोल का जो शिविर हुआ था उसमें बहुत विस्तार से बात चली थी अपने। अपना ये योग का प्रकरण चल रहा है ना सम्यक के साथ। हाँ, आपका प्रश्न है, आपने तो सम्य दृष्टि देव कहाँ जाता है बोला, सम्य दृष्टि नारकी कहाँ उत्पन्न होता है तो मनुष्य में, सम्य दृष्टि तिर्यंच देव में, सम्य दृष्टि मनुष्य कहाँ जन्म सकता है। देखो बाद में आयु बांधी हुई या पहले भी हुई तो देव में जाएगा, वो तो सरल है, परंतु जो क्षायिक सम्य दृष्टि है या क्षायिक होने अभी जा रहा है ऐसा जो कृतकृत्य वेदक है, जिसने पहले उस भव की आयु बांधी है, ऐसे वो भोग भूमि का तिर्यंच, भोग भूमि का मनुष्य या पहले नरक का नारकी हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, शायक होना चाहिए, यानी सम्यक तो होने के पहले जिसने मनुष्य आयु तिर्यंच आयु या नरक आयु बंदी है, जिसके बाद में जिसको सम्यक दर्शन हुआ है। हाँ, बाद में सम्यक तो हुआ है, वेदक सम्यक तो होगा तो सम्यक तो छूट कर वहां चला जाए। कोई यहाँ का सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक के साथ अभी भोग भूमि में चला जाएगा ऐसी बात नहीं होती। हाँ, देखो आपका प्रश्न है कृतकृत्य और वेदक समान है कि क्या है, पहले में पहले ये देखो कि वेदक सम्यक तो कहते किसे, जो क्षोभक्षम सम्यक तो है वही वेदक सम्यक तो है, तो कृतकृत्य वेदक और ऑर्डिनरी वेदक में क्या अंतर है। जब जीव क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करता है तो पहले में पहले क्या करता है, तो अनंतानुबंधी जो कषाय है कर्म जो है उसकी विसंयोजना करता है, यानी क्या करता है उसको अन्य कषाय रूप परिणमित करता है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और अन्य जो नौ कषाय है उस रूप वो अनंतानुबंधी के सभी परमाणु परिणमित होते हैं, अभी उसकी सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं है। फिर क्या करता है, मिथ्यात्व कर्म के परमाणु का क्षय करता है, क्षय होता है सभी परमाणु है वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं। उसके बाद एक और अंतर्मूर्त में फिर सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सभी के सभी सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। अब उसकी जो जितनी कोई स्थिति हुई वो भी घटते घटते एक अंतर्मूर्त बाकी रहता है, अब उस एक अंतर्मूर्त में जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि होने जा रहा है, उस जो अंतिम अंतर्मूर्त है तब उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। वेदक का अर्थ होता है उसका जिसका उदय है उसका वेदक कहा जाता है, पहला क्षायिक होने के पहले एक अंतर्मूर्त जहाँ सम्यक प्रकृति सत्ता में है, दर्शन मुनि की अन्य दो प्रकृतियों का क्षय हो चुका है और अकेली अभी सम्यक प्रकृति एक अंतर्मूर्त वाली बाकी है, ऐसी अवस्था में जीव मरकर सम्यक के पहले जो आयु बांधी है वहां उत्पन्न हो सकता है, तो तिर्यंच मनुष्य नरक या देव कहीं भी कृतकृत्य वेदक जहां कहां उसकी आयु बांधी और वहां जिसका मरण होता है तो वहां वो उत्पन्न हो सकता है। देखो ये वेदक और क्षोभक्षम सम्यक तो एक ही है, परंतु कृतकृत्य वेदक को क्षोभक्षम सम्यक तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, रस्ते में नहीं वहां जाकर वो, क्योंकि एक समय बाकी हो तो रस्ते में पूर्ण होगा, दो समय बाकी है तो वहां जाके पूर्ण होगा, वो जो पूर्णता को जितना समय बाकी है उतने में वो पूर्ण होगा ही, वो विग्रह गति में है, अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए रुक गया, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण कर सकता है।
आपने क्या कहा?
मैंने ऐसा कहा, वेदक सम्यक को ही हम क्षोक्षम सम्यक कहते हैं। तो क्षोक्षम क्यों कहते हैं और वेदक क्यों कहते हैं?
सम्यक प्रकृति का वेदन करता है इसलिए वेदक कहते
हैं। सम्यक प्रकृति का वेदन करता है क्योंकि जो क्षोक्षम सम्यक दृष्टि है उसका भी उदय किसका है? सम्यक प्रकृति का उदय है। और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व वो सत्ता में पड़े हैं, उसका उदय नहीं है तो उसका क्षोक्षम है, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं। उस रूप उदय हो जाए तो जीव मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो उसका उदय नहीं है परंतु सत्ता में वो है, इसलिए उसका क्षोक्षम। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में ये बात आई है, उस सम्यक्त को क्षोक्षम क्यों कहा कहना? तो जो वो परिभाषा है ना क्षोक्षम की, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का भविष्य काल में सदवस्था रूप क्षम। अब यहाँ दो प्रकृति सर्वघाती है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, उनका उदय का अभाव, उदय का अभाव यानी परमाणु तो जा रहे हैं परंतु किस रूप से? सम्यक्त्व प्रकृति रूप टर्न होके उदय में आ रहे हैं, क्षय तो हो रहा है परंतु उसी अनुभाग सहित क्षय नहीं हो रहा है, वो खिर रहे हैं। किस रूप से खिर रहे हैं? सम्यक प्रकृति देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं, उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। अपने रूप से उदय नहीं हो रहा है फिर भी खिरना चल रहा है, क्योंकि जो उदयावली में आए हैं वो तो खिरेंगे ही, परंतु वो किस रूप से खिर रहे? सम्यक प्रकृति रूप से खिर रहे। इसलिए वहां उन दो प्रकृतियों की अपेक्षा क्षोक्षम कहा, और वेदक यानी उदय किसका है? सम्यक प्रकृति का, उस अपेक्षा से उसको वेदक कहा। नाम दो है, बात एक ही है, परंतु जब कृतकृत्य वेदक कहते हैं तो उसके सत्ता में न मिथ्यात्व है न सम्यक मिथ्यात्व है, अकेला वो वेदक कहलाएगा। कृतकृत्य करने जैसा कार्य कर चुका, हम लड़की की शादी कर दे तो क्या होते? कृतकृत्य होते, वैसे कृतकृत्यता नहीं है। अपन
कृतकृत्य वेदक और अलग है,
अलग है। कृतकृत्य वेदक तब तक अभी सम्यक प्रकृति है, उसका उदय भी है, सत्ता में भी है। क्षायिक जब वो सम्यक प्रकृति का भी पूर्ण क्षय हो जाता है तब उसको हम क्षायिक सम्यक दृष्टि कहेंगे। अब यहाँ बात चल रही है अपनी, चौथे गुणस्थान की चल रही थी अपनी, पर्याप्त भी और अपर्याप्त अवस्था में भी वो, ये चौथा गुणस्थान होता है उसके, पंचेंद्रिय जीव है तो उसके कौन कौन से योग हो गए यहाँ पर? मन के चार, वचन के चार, औदारिक वैक्रिय। अभी जो मिश्र अवस्था में जो है, अपर्याप्त अवस्था में जो मनुष्य में सम्यक्त्व के साथ जन्मा है या तिरिंच में, औदारिक मिश्र होगा, देवों में जन्मता है वो वैक्रिय मिश्र होगा, और किसी के कारमान भी होगा विग्रह गति में, इस तरह से वहां 13, यहां 10 थे तीसरे में, यहां 13 हो गए। क्यों? क्योंकि यहां मरण नहीं था
इसीलिए मिश्र निकल गया,
इसमें मिश्र और कारमान नहीं थे और यहां वो फिर होते हैं। अब पांचवें गुणस्थान से आगे वहां भी मिश्र नहीं हो गए, ख्याल में आता है ना? कोई पांचवें गुणस्थान में मरकर पांचवें गुणस्थान के साथ अन्य गति में नहीं जाता, पांचवें में मरा भले 11वें में मरा, कहीं पर भी पांचवें से 11वें तक मरण होता है तो कौन से गुणस्थान में जाता है? वो चौथे में। मरकर देव होगा तो चौथे में ही जाएगा, पांचवें से आगे कहीं पर भी मरण होता है तो देव ही होता है नियम से। अभी उसमें भी और भी नियम है, अब हम पांचवें से 12वें तक के देखते, थोड़ी टाइम है भी 4 मिनट। ये संगी पर्याप्तों को ही होगा। अभी पांचवें गुणस्थान वाले कौन से गति के जीव है? मनुष्य तिरंज। अभी उनमें हम योग गठित करेंगे मनुष्य। अभी हमको वैक्रिक ना देखना है ना ही वो मिश्र, तो किसी के देखना ही नहीं, नहीं कारमान देखना है। तो हमारे पास कितने बचे? मन के चार, वचन के चार और अवदारी के। मनुष्य हो या तिरंज हो तो चौथे पांचवें गुणस्थान वालों के 9 योग हो गए। अभी छठे को अलग रखते हैं क्योंकि उसमें तो आहारक भी हो सकता है, तो 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें तक कौन सा योग हो सकते हैं? मन के चार, वचन के चार और औदारिक का योग। अब छठे की बात करेंगे हम। छठे गुणस्थान किसके होता है? तो जो आहार संगी पंचेंद्रियों के होता है, क्योंकि मुनिराज है, मनुष्य गति का जीव है, और जब उनके आहारक मिश्रे तब उनको अपर्याप्त भी कहेंगे। वो जन्म लेने वाला अपर्याप्त नहीं, आहारक मिश्र की अपेक्षा अपर्याप्त। तो उनके कौन कौन से हो गए? तो ऑर्डिनरी हम देखेंगे तो मन के चार, वचन के चार और औदारिक एक, यानी जो हमेशा के छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनियों के जो होते हैं। और जिसको आहारक वो शरीर की रचना करते हैं तो उनके आहारक मिश्र पहले होगा और बाद में आहारक का योग होगा। सबको नहीं होता, जिनके होगा उनके, और जिन्होंने वो बांधा है कर्म उनके भी वो यूटिलाइजेशन होता नहीं है, उसका उदय होगा या उसके वो उपयोग करेंगे ऐसी बात नहीं होती। अब तेरवे की बात। हाँ, जैसे जैसे अन्य काल में छह पर्याप्ति होगी ना अन्य भव से आकर, वैसे जब आहारक शरीर होता है तो आहारक शरीर संबंधी छह पर्याप्ति होती है। इसलिए उसकी भी शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक आहारक मिश्र का योग होता है, और बाद में आहारक का योग होगा, मनोयोग भी होगा, वचन योग भी होगा। आहारक शरीर संबंधी मन वचन योग होगा वहां पर। अब सहयोग केवली गुणस्थान, वहां भी छह पर्याप्ति पूरी होगी आहारक में। वहां श्वासोश्वास सब होगा, आहारक उस शरीर संबंधी श्वासोश्वास होगा। अभी जो तेरहवें गुणस्थान है तो तेरहवें गुणस्थान हम वो जो केवली समुद्रात है उसको अलग बाद में देखेंगे। रेगुलर जो तेरहवां गुणस्थान है उसमें मन के दो होते हैं, सत्य और अनुभव, वचन के भी दो और अनुभव और औदारिक का योग। और जब केवली समुदात करते हैं तो कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र और प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में कारमा। इस तरह केवली को कितने हैं? सयोग केवली को सात हो गए, और अयोग केवली के कितने हो गए? हाँ, ये कहते पांच, आप बोलो। भूल करते थे तो ज्यादा ख्याल। तो अयोगी को कोई योग नहीं है, तो वो योग से रहित हो गए, उनके किसी नाम कर्म वो शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता है। इस तरह से हमने ये घटित किया है, अपना समय भी हो चुका है। और भी जो बातें आश्रव, अभी हमने तो योग कहाँ कितने होते हैं घटित किया, अब हम कहाँ कितने आश्रव होते हैं वो भी घटित करेंगे। मिथ्या तो अविरति वो सब कषाय योग कहाँ कौन से, क्योंकि योग की बात थोड़ी डिफिकल्ट थी, अभी योग की बात ख्याल में आ गई तो हम अभी कल ऐसा गठित करेंगे कौन से गुणस्थान में मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग में से कहाँ कितने होते हैं, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यही रुकते बोलो चौबीसो भगवान की।